नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगाया। दिल्ली मेट्रो का परिचालन इस वर्ष अब तक 99.95% समय से रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इसके दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी। और भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार किया। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से ये देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस वर्ष अभियान ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रैली भी आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का दोबारा संकल्प लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा देश का गौरव है और देश के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देता है। दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलंजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष बल्होत्रा के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत सभी जिलों और कई मंडलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। जनकपुरी ढोली पियाऊ से तिलकनगर तक निकाली गई तिरंगा बाइक रैली में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद और मनिंदर सिंह सिरसा सहित अन्य भाजपा नेता तथा कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य हर घर तिरंगे को पहुंचाना है।
15 अगस्त और 26 जनवरी नेशनल इम्पोर्टेंस के फेस्टिवल्स हैं, ये कोई एक्सटेंडेड वीकेंड नहीं है। ऐसी भावना उत्पन्न करने का और देश में देशभक्ति के ज्वार को खड़ा करने का एक ये अभियान है। यहाँ तिरंगा यात्रा निकल रही है, बाइक रैली निकलेगी, एक जन सहभागिता और जन आंदोलन के रूप में हर घर पे तिरंगे को लगाकर देश के शहीदों और वीरों को नमन करने का समय है।
दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज पूर्ववर्ती सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रस्तुत पेश की गई 24वीं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आरोप लगाए। नई दिल्ली स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने बताया कि 7 अगस्त को सामने आई 31 मार्च 2023 तक के रिपोर्ट में करीब 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं।
सीएजी रिपोर्ट केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार का रिटर्न डॉक्यूमेंट है। केजरीवाल सरकार में ऑडिट नहीं होता था कामों का। डेढ़ साल के अंदर में हमारी सरकार के आते ही 24 रिपोर्ट आ चुकी। हर रिपोर्ट में सैकड़ों हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हमारे सामने आया है। जो परसों रिपोर्ट आई इसमें भी 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सीएजी ने हमारे सामने इस डॉक्यूमेंट में पेश करी है।
श्री सिंह ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में टैक्स बकाया, जीएसटी पंजीकरण, ई वे बिल, बिजली सब्सिडी और मैनुअल टेंडर से जुड़ी कई अनियमितताओं का उल्लेख हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार इन मामलों की जांच कराएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी के अनुसार वर्तमान वर्ष में दिल्ली मेट्रो 99.95% समय से चली। डीएमआरसी ने रेल परिचालन की समयबद्धता और विश्वसनीयता के मामले में हांगकांग, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसी विश्व की प्रमुख मेट्रो प्रणालियों के बीच खुद को सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली के रूप में स्थापित किया है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली मेट्रो के करीब 23 वर्षों के परिचालन के दौरान नेटवर्क के लगातार विस्तार के बावजूद उच्च परिचालन दक्षता कायम रही है। वहीं शुरुआती वर्षों में दिल्ली मेट्रो के ट्रेनों के बीच लगभग 7 मिनट अंतराल घटकर आज सबसे व्यस्त कॉरिडोर पर मात्र 2 मिनट 18 सेकंड रह गया है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो 12 लाइनों और 303 स्टेशनों के साथ 416 से अधिक किलोमीटर के नेटवर्क पर संचालित हो रही है। वहीं दिल्ली मेट्रो करीब 29% नेटवर्क पर ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा के साथ भारत का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क बन गया है। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह उपलब्धियां तकनीकी नवाचार, बेहतर रखरखाव और परिचालन उत्कृष्टता के निरंतर प्रयासों का परिणाम है तथा इसके लिए डीएमआरसी को हाल के वर्षों में कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने आज देवली विधानसभा के संगम विहार ए वार्ड में और देवली वार्ड में 37 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आवंटित इस धनराशि के अंतर्गत लगभग 4 किलोमीटर लंबा डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग बनाया जाएगा और क्षेत्र में 2 बारातघर का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने आज शिवाजी महाराज मार्ग करमपुरा औद्योगिक क्षेत्र मोतीनगर में राहगीरी दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों के बीच सड़क सुरक्षा, स्वच्छता और कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। एक रिपोर्ट।
कार्यक्रम में 300 से अधिक नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसमें लगभग 150 स्कूली छात्र शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, सूखा और गीला कचरा अलग करने और जिम्मेदार कचरा प्रबंधन के संबंध में जागरूकता पैदा करने पर विशेष बल दिया गया। निगम ने नागरिकों से कचरे के स्रोत पर ही अलग अलग करने और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने की अपील की। साथ ही युवाओं और छात्रों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ दिल्ली के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार लिए वीरेंद्र कौशिक।
दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति विभाग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी द्वारा की गई प्रेस वार्ता के दौरान उनके विभाग पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और इस पर आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा ने उनके खिलाफ बेबुनियाद, झूठी और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं। उन्होंने दोनों नेताओं को 24 घंटे के भीतर आरोप वापस लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की और ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज बताया कि मॉडल टाउन स्थित नैनी लेक के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मिश्रा ने कहा कि नैनी लेक के पुनर्विकास की योजना में झील के आसपास के क्षेत्र को बेहतर बनाने के साथ पर्यटन और मनोरंजन सुविधाओं जैसे एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलने के विस्तार पर भी बल दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इस योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में आवासन और शहरी कार्य सचिव सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय परीक्षण वकालत प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि भारत की न्याय परंपरा ने सदैव तर्क को शक्ति, संविधान को मर्यादा और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि मॉनसून की बारिश के बावजूद मायापुरी चौक पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और सड़कें बिना किसी जलभराव के साफ हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विभाग ने कहा कि उनके बेहतर जल निकासी प्रबंधन और समय पर की गई तैयारियों के कारण लोग सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के आवाजाही कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में बारिश के बाद लोगों को आज दिन भर तेज धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगाया। दिल्ली मेट्रो का परिचालन इस वर्ष अब तक 99.95% समय से रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इसके दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी और भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।